एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो करीब 2500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसके सवाल आप यकीन मानिए आज भी उतने ही ताजा हैं।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान दार्शनिक प्लेटो की रचना द रिपब्लिक के। हमारे पास ना इस पर आधारित दो विश्लेषण हैं जिनसे हम इसके जरूरी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। और देखिए, आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें अक्सर ये सवाल उठता है, भाई न्याय क्या है? एक अच्छा समाज वो दिखता कैसा है? क्या सिर्फ कायदे कानून मान लेना ही काफी है या कुछ और भी है?
हाँ, और रिपब्लिक इन्हीं बुनियादी सवालों से जूझती है,
इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक है। हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है बल्कि हमारे अपने जीवन और समाज को समझने का एक जरिया बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटो और उनकी सोच को समझने का ये सफर। तो पहले बात करते हैं इस किताब के पीछे के दिमाग की। प्लेटो, इनका जन्म एथेंस में हुआ करीब 428 ईसा पूर्व, और हाँ, एक अमीर कुलीन परिवार में। उन्होंने अपनी आंखों से एथेंस को देखा था, वो पेलोपोनेशियन युद्ध की उथल पुथल और लोकतंत्र के नाम पर जो ज्यादतियां हो रही थी वो सब।
लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शायद वो था जब उनके गुरु सुकरात को एथेंस के लोकतंत्र ने ही 399 ईसा पूर्व में मौत की सजा दे दी। आप सोचिए जरा।
हाँ, ये बहुत बड़ा सदमा रहा होगा अपने गुरु को लोकतंत्र के हाथों मरते देखना।
इसी घटना ने प्लेटो को राजनीति से एकदम कह सकते हैं मोहभंग कर दिया और वो दर्शन की तरफ मुड़ गए।
सही कहा। सुकरात की मौत ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि क्या बहुमत का शासन हमेशा सही होता है? क्या भीड़ की राय न्याय कर सकती है?
हाँ, इसी अनुभव ने उनके न्याय और आदर्श शासन के विचारों को वो गहराई दी होगी।
बिल्कुल। और फिर उन्होंने एथेंस में एकेडमी खोली जिसे पश्चिम का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है।
और उनकी बातों में इसलिए भी दम है क्योंकि वो सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने गणित सीखा, संगीत सीखा, कई देशों में घूमे, अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं देखी।
हाँ, और यहाँ तक कि एक राजा को सलाह देकर राजनीति सुधारने की कोशिश भी की, हालांकि वो सफल नहीं हुए थे उसने।
तो उनके पास दार्शनिक सोच भी थी, लिखने की कला भी और दुनिया देखने का अनुभव भी।
ये सब मिलकर उन्हें एक अनोखी नजर देता है। वो सिर्फ समस्याओं पर उंगली नहीं उठाते बल्कि समाधान भी सोचते हैं। वो असल में पश्चिमी दर्शन की नींव रख रहे थे, खासकर इस सवाल के जवाब में कि भाई एक न्यायपूर्ण समाज और व्यक्ति होता कैसा है।
अच्छा, अब आते हैं किताब पर, द रिपब्लिक। ये असल में सुकरात और कुछ दूसरे लोगों के बीच एक लंबी गहरी बातचीत है। ऐसा लगता है जैसे एक ही दिन में हुई हो।
हाँ, पर इसे कोई नेताओं के लिए गाइडबुक मत समझिएगा। ये तो एक तरह का विचार प्रयोग है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट।
जैसे कोई वैज्ञानिक लैब में आइडियल कंडीशन बनाता है ना किसी सिद्धांत को परखने के लिए।
हाँ, हाँ।
प्लेटो यहाँ शब्दों से एक आदर्श समाज का मॉडल बनाते हैं, और इस पूरी बातचीत का जो सेंट्रल सवाल है वो है न्याय क्या है।
और उससे भी बड़ा सवाल, क्या न्यायपूर्ण होना हमेशा फायदेमंद है, भले ही दुनिया आपको सताए या गलत समझे?
बिल्कुल। और प्लेटो का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं न्याय कोई बाहरी चीज नहीं है, जैसे टैक्स भर दिया या सच बोल दिया। नहीं।
तो फिर क्या है?
न्याय तो आत्मा के अंदर की बात है, एक तरह का अंदरूनी संतुलन, हार्मनी।
अच्छा, हार्मनी। जैसे
शरीर स्वस्थ होता है जब सारे अंग ठीक से काम करें, वैसे ही आत्मा न्यायपूर्ण होती है जब उसके अलग अलग हिस्से, मतलब तर्क, भावनाएं और इच्छाएं सही तालमेल में हो।
ये दिलचस्प है, तर्क, भावनाएं और इच्छाएं।
हाँ, और इसी अंदरूनी न्याय को समझाने के लिए प्लेटो एक बड़े कैनवस का इस्तेमाल करते हैं, एक आदर्श शहर राज्य का, जिसे वो कैलिपुलस कहते हैं।
उनका तर्क ये है कि शहर जो है वो समाज का बड़ा रूप है और व्यक्ति उसका छोटा।
सही। तो अगर हम शहर में न्याय को पहचान लें तो शायद व्यक्ति की आत्मा में भी उसे समझ पाएंगे। ये शहर आत्मा की तुलना जो है ये पूरी किताब की रीढ़ है, समझिए।
और इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें राजनीति भी है, नैतिकता भी, सच क्या है, तत्वमीमांसा, हम जानते कैसे हैं, ज्ञान मीमांसा, शिक्षा का असली मकसद क्या है, मन कैसे काम करता है, मतलब सब कुछ शामिल है इसमें।
हाँ, ये सिर्फ न्याय की बात नहीं बल्कि पूरे इंसानी समाज और जीवन को तर्क की कसौटी पर कसने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो चलिए इस बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत होती है न्याय की कुछ आम परिभाषाओं से। एक बुजुर्ग है सेफोलिस, वो कहते हैं भाई न्याय है सच बोलना और अपना कर्ज चुकाना।
सुनने में तो ठीक लगता है,
लेकिन सुकरात तुरंत सवाल करते हैं, अच्छा तो क्या आप एक पागल आदमी को उसका मांगा हुआ हथियार वापस कर देंगे सिर्फ इसलिए कि वो उसका कर्ज है?
नहीं, वो तो खतरनाक हो सकता है, बात तो सही है।
तो ये परिभाषा तो टिक नहीं पाई। फिर उनके बेटे आते हैं पोलेमार्कस, वो कहते हैं न्याय है दोस्तों की मदद करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना।
ये तो बहुत कॉमन सोच है आज भी।
हाँ, लेकिन सुकरात इसे भी नकारते हैं। वो कहते हैं किसी को नुकसान पहुंचाना उसे और बुरा बनाता है, और न्याय का काम किसी को बुरा बनाना तो नहीं हो सकता, ये तो न्याय की परिभाषा के ही खिलाफ है।
ये भी सोचने वाली बात है।
माहौल तब गर्म होता है जब थ्रेसीमेकस नाम के एक सोफिस्ट आते हैं। वो बड़े जोर से कहते हैं न्याय ताकतवर का हित है।
ओहो, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस।
बिल्कुल वही कि सरकारें अपने फायदे के लिए कानून बनाती हैं और लोग उन्हें माने, बस यही न्याय है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्याय करना ज्यादा फायदेमंद है अगर आप पकड़े ना जाएं तो।
बाबरे, ये तो सीधी चुनौती है पूरी नैतिकता को। क्या हम न्याय को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें सजा का डर है?
हाँ, यही सवाल प्लेटो के भाई ग्लॉकन और एडमेंटस और कुरेदते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं गाइगीज के अंगूठी की, एक जादुई अंगूठी जिसे पहनकर इंसान गायब हो जाता है।
अच्छा, फिर
वो पूछते हैं अगर आपके पास ऐसी अंगूठी हो और आप कुछ भी करके बच निकल सकते हो तो क्या आप फिर भी न्याय का रास्ता चुनेंगे? वो सुकरात से कहते हैं कि साबित करें कि न्याय अपने आप में अच्छा है, उसके नतीजों की वजह से नहीं।
ये तो बहुत मुश्किल सवाल है।
हाँ, और इसी का जवाब देने के लिए सुकरात वो शहर आत्मा की तुलना वाला आइडिया लाते हैं। कहते हैं चलो पहले एक आदर्श शहर बनाकर देखते हैं कि न्याय उसमें कैसे काम करता है।
और यहीं से शुरू होता है विशेषज्ञता का सिद्धांत।
बिल्कुल, कि हर कोई वो काम करे जिसमें वो माहिर है। फिर तीन वर्ग उभरते हैं, उत्पादक, किसान, कारीगर वगैरह, सहायक, योद्धा, गार्डियंस ऑक्सिलरीज, और शासक,
रूलर्स। अच्छा, अब आता है न्याय का असली रूप, शहर में और फिर आत्मा में। प्लेटो कहते हैं जैसे शहर में न्याय तब होता है जब हर वर्ग अपना अपना काम करे और दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए,
वैसे ही व्यक्ति की आत्मा में भी न्याय होता है।
न्याय होता है?
हाँ, आत्मा के वो तीन हिस्से याद हैं, तर्क, भावना और इच्छाएं।
हाँ हाँ, तर्क समझ, भावना हिम्मत गुस्सा, और इच्छाएं भूख पैसा वगैरह।
तो आत्मा में न्याय तब होता है जब आपका तर्क आपकी भावनाओं की मदद से आपकी बेगाम इच्छाओं पर काबू रखे।
अच्छा, एक उदाहरण दे सकते हैं?
सोचिए, आपको पता है कि सेहत के लिए मीठा कम खाना चाहिए, ये हुआ तर्क, लेकिन मन ललचा रहा है, ये है इच्छा। आपकी इच्छा शक्ति या संकल्प, ये भावना तर्क का साथ देती है और आप खुद को रोक लेते हैं, ये है आत्मा का संतुलन। यही है प्लेटो के लिए असली न्याय।
और अन्याय इसका उल्टा?
बिल्कुल, आत्मा में गृह युद्ध, जहां इच्छाएं या गुस्सा आपके तर्क पर हावी हो जाएं।
ये तो हुई व्यक्ति की बात, अब आते हैं प्लेटो के कुछ सबसे क्रांतिकारी और आज भी विवादास्पद विचारों पर, खासकर शासक वर्ग के लिए।
हाँ, इसमें कुछ चीजें तो आज भी लोगों को हजम नहीं होती। पहला, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए और वो शासक भी बन सकती हैं।
वाह, उस जमाने में ये कहना।
बिल्कुल, प्लेटो का तर्क था कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, योग्यता देखनी चाहिए, जेंडर नहीं।
ये तो बहुत प्रगतिशील सोच थी। और दूसरा?
दूसरा, शासक और योद्धा वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार का खात्मा।
क्या मतलब? कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, कोई फैमिली नहीं?
हाँ, वो साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, उनका अपना कुछ नहीं होगा, बच्चों की परवरिश भी सामूहिक होगी।
लेकिन क्यों, इसका क्या लॉजिक था?
ताकि उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए हो, अपने परिवार या संपत्ति के मोह में ना पड़े। जाहिर है ये विचार बहुत
रेडिकल है।
ये तो है। और तीसरा सबसे मशहूर विचार, हाँ वो है कि आदर्श राज्य तभी संभव है जब दार्शनिक राजा बने या राजा दार्शनिक बने।
यानी शासन वो करें जो ज्ञान और सच्चाई से प्यार करते हैं।
सही, न कि वो जो सत्ता या पैसे के भूखे हैं। प्लेटो का मानना था कि सिर्फ दार्शनिक ही समझ सकते हैं कि सबके लिए अच्छा क्या है, मतलब शुभ, द गुड क्या है।
लेकिन ये दार्शनिक कौन है और वो ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते?
हाँ, ये सवाल तो है। यहीं प्लेटो अपने विचारों के सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और गुफा के रूपक एलेगरी ऑफ द केव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, ये असली नहीं है।
असली नहीं है तो फिर क्या है?
ये तो बस असली चीजों की परछाइयां हैं या अपूर्ण प्रतियां हैं।
परछाइयां? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
इसे ऐसे समझिए जैसे दुनिया में हजारों अलग अलग तरह की कुर्सियां हैं, है ना? लकड़ी की, प्लास्टिक की, आराम कुर्सी।
हाँ,
लेकिन एक कुर्सी का आइडिया या आदर्श कुर्सी है, एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट जिसका ये सब सिर्फ अधूरा रूप है। प्लेटो के लिए ऐसे ही न्याय, सुंदरता, अच्छाई के आदर्श विचार फॉर्म्स ही असली सच्चाई हैं, और इन्हें सिर्फ तर्क से समझा जा सकता है, आंखों से नहीं।
ओके, मतलब असली दुनिया विचारों की दुनिया है और ये दुनिया उसकी परछाई।
हाँ, कुछ ऐसा ही। और गुफा का रूपक इसे और अच्छे से समझाता है। कल्पना कीजिए कि कुछ लोग जन्म से एक अंधेरी गुफा में कैद हैं, जंजीरों में बंधे हुए, सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं।
ठीक है।
उनके पीछे एक आग जल रही है और आग और उनके बीच से लोग तरह तरह की चीजें लेकर गुजरते हैं जिनकी परछाइयां दीवार पर पड़ती हैं।
अच्छा,
उन कैदियों के लिए वही हिलती दुलती परछाइयां ही असली दुनिया है। उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं कभी।
समझ रही हूँ।
अब सोचिए अगर एक कैदी को आजाद करके बाहर असली दुनिया में लाया जाए, सूरज की रोशनी में,
तो पहले तो उसकी आंखें चौंधी आ जाएंगी
और अंत में वो सूरज को देख पाएगा।
सूरज जो रोशनी देता है।
हाँ, प्लेटो के लिए सूरज प्रतीक है सबसे बड़े विचार का, शुभ के विचार का, जिससे बाकी सब विचारों को और ज्ञान को रोशनी मिलती है।
तो ये रूपक क्या दिखाता है?
ये दिखाता है कि कैसे हम अज्ञान, गुफा की परछाइयां से ज्ञान, बाहर की दुनिया, विचार की तरफ बढ़ते हैं। और ये सफर कितना मुश्किल हो सकता है, ये दार्शनिक की यात्रा है।
और अगर वो वापस गुफा में जाए
तो शायद बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाएं या उसे मार ही डालें, क्योंकि वो उनकी जानी पहचानी परछाइयों की दुनिया पर सवाल उठा रहा है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम खुद तो किसी गुफा में नहीं जी रहे, अपनी बनाई हुई या दूसरों की दिखाई हुई परछाइयों को सच मानकर।
बिल्कुल। इसके बाद प्लेटो बताते हैं कि कैसे आदर्श राज्य भी धीरे धीरे बिगड़ सकता है। सबसे अच्छा है एरिस्टोक्रेसी, ज्ञानियों का शासन। फिर आता है टिमोक्रेसी, सम्मान के भूखे लोगों का राज। फिर ओलिगार्की, पैसे वालों का राज।
फिर डेमोक्रेसी, जिसे प्लेटो थोड़ा अराजक मानते थे, क्योंकि उसमें हर इच्छा को बराबर मान लिया जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी।
हाँ, और अंत में सबसे बुरा रूप टायरेनी, यानी निरंकुश तानाशाह का राज। और हर तरह का राज एक खास तरह की बिगड़ी हुई आत्मा का आईना है।
और सबसे दुखी इंसान कौन?
वही तानाशाह, जो अपने इच्छाओं का गुलाम बन चुका है। इसके विपरीत सबसे सुखी जीवन दार्शनिक का है, जिसका जीवन तर्क और न्याय से चलता है।
किताब के अंत में वो कला की फिर से आलोचना करते हैं।
हाँ, कहते हैं कि ये नकल की नकल है, सच्चाई से तीन कदम दूर। और फिर एर का मिथक आता है, मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों का फल मिलता है और अगला जीवन चुनने का मौका मिलता है। ये सब मिलकर यही साबित करता है कि न्यायपूर्ण जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है।
वाह, ये तो काफी गहरा गोता था प्लेटो के विचारों के समंदर में। तो अगर हमें कुछ मुख्य बातें हैं, नो टेक अवेज निकालने हो, तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात, न्याय कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन है। जस्टिस इज इंटरनल हार्मनी।
हाँ, ये आपकी आत्मा का स्वास्थ्य है। क्या आपका तर्क आपकी इच्छाओं और भावनाओं पर राज कर रहा है? यह सवाल आज भी उतना ही मौजूद है पर्सनल लेवल पर।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा विचार है दार्शनिक राजा का। अब देखिए, भले ये पूरी तरह व्यवहारिक न लगे, पर ये हमें याद दिलाता है कि नेताओं में सिर्फ सत्ता पाने की कला नहीं बल्कि ज्ञान, नैतिकता और सच में सबकी भलाई की सोच होनी चाहिए।
आजकल के नेताओं को देखते हुए ये विचार और भी जरूरी लगता है ना?
हाँ, बिल्कुल। तीसरा, शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि चरित्र बनाना, पाइडेरिया। प्लेटो मानते थे कि समाज को अच्छे नागरिक बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
आज हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या कर रही है? क्या वो सिर्फ दिमाग तेज कर रही है या दिल और नैतिकता को भी सींच रही है? सोचने वाली बात है।
चौथा, वो विचारों की दुनिया वाली बात। ये हमें सिखाती है कि जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है। सतह के नीचे झांकना, चीजों के असली मतलब को समझने की कोशिश करना, क्रिटिकल थिंकिंग। और पांचवा, लोकतंत्र पर प्लेटो की आलोचना। हाँ, ये आज हमें चुभ सकती है, पर इसे सिरे से खारिज करने के बजाय ये सोचने का मौका देती है कि लोकतंत्र की भी अपनी चुनौतियां हैं, जैसे भीड़ की राय का हावी होना या सतही बातों पर वोट पड़ना।
क्या बहुमत हमेशा सही होता है? ये सवाल प्लेटो ने 2500 साल पहले उठाया था।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, कुछ पर बात करें?
जरूर। एक तो वही दार्शनिक राजा वाली बात, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या राजा दार्शनिक नहीं बन जाते, तब तक शहरों को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी।
सीधा मतलब, ज्ञान और ताकत का सही मेल जरूरी है, वरना गड़बड़ होगी ही। हाँ, और न्याय की वो अंदरूनी परिभाषा मुझे बहुत पसंद है। न्याय बाहरी काम करने से नहीं, बल्कि अंदर क्या है उससे जुड़ा है। वो अपने अंदर के घर को सजाता है, खुद का मालिक बनता है और अपने साथ शांति में रहता है।
मतलब असली शांति बाहर नहीं, अपने अंदर के संतुलन में है।
बिल्कुल। और गुफा वाले रूपक का सार भी कमाल का है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया शायद उन परछाइयों जैसी ही है। असली ज्ञान पाना एक मुश्किल सफर है, ऊपर की ओर यात्रा।
ये हमें विनम्र बनाता है, याद दिलाता है कि शायद हम सब कुछ नहीं जानते।
सही। और भले ही ये लाइन सीधे रिपब्लिक में ना हो, पर सुकरात की ये भावना पूरी किताब में है। बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक नहीं है।
यानी खुद से सवाल पूछते रहना, अपनी सोच को चुनौती देते रहना, यही जीने का सही तरीका है।
तो अब सवाल ये है कि ये सब ज्ञान, ये हजारों साल पुराने विचार आज हमारे किस काम के? इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, वो आत्मा के तीन हिस्सों वाली बात, तर्क, भावना, इच्छा, ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है खुद को समझने के लिए। अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें या गुस्सा आ रहा हो, तो एक पल रुककर सोचिए, अभी कौन सा हिस्सा हावी है, तर्क या इच्छा या भावना।
हाँ, ये हमें बेहतर सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस दे सकता है।
और लीडरशिप के बारे में सोचते हुए, चाहे वो ऑफिस में हो या देश में, प्लेटो हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ स्मार्ट होना या पावरफुल होना काफी नहीं है। क्या लीडर नैतिक है? क्या वो सबकी भलाई सोचता है? हमें सिर्फ नतीजों पर नहीं, नीयत पर भी ध्यान देना चाहिए।
शिक्षा पर भी दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या स्कूल सिर्फ सिलेबस पूरा कर रहे हैं, या बच्चों को अच्छा इंसान बनना, सही गलत में फर्क करना, आलोचनात्मक सोच रखना भी सिखा रहे हैं?
प्लेटो की समग्र शिक्षा वाली बात आज भी बहुत जरूरी है।
और आज के जमाने में जहां हम 24 घंटे मीडिया और सोशल मीडिया से घिरे हैं, प्लेटो की कला और कहानियों की ताकत पर चिंता बहुत प्रासंगिक लगती है।
ये फिल्में, सीरीज, विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये सब हमारी सोच, हमारे मूल्यों को कितना प्रभावित करते हैं। क्या हम आंख बंद करते सब मान लेते हैं या सवाल उठाते हैं?
कहीं हम डिजिटल दुनिया की गुफा में तो नहीं जी रहे हैं, जहां एल्गोरिदम हमें वही परछाइयां दिखा रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं?
बिल्कुल। ये हमें एक सजग नागरिक बनने में मदद करता है। सिर्फ भावनाओं में बहकर या पार्टी लाइन फॉलो करने के बजाय, मुद्दों को तर्क से समझना और फिर अपनी राय बनाना। तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि न्याय, अच्छाई और खुशी, ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। एक अच्छा संतुलित जीवन जीना ही असली खुशी है, और इसकी शुरुआत अंदर से होती है।
और मेरे लिए ये कि प्लेटो का आदर्श शहर कोई बनाने लायक नक्शा नहीं, बल्कि एक सोचने का औजार है। इसका असली मजा उन सवालों में है जो ये खड़ा करता है हमारे अपने बारे में, हमारे समाज के बारे में। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, और यही किसी महान किताब की पहचान है, है ना?
अच्छा ज्ञान कुछ ही लोगों को हो सकता है, इसलिए शासन भी उन्हीं को करना चाहिए। आज हम लोकतंत्र और सबकी भागीदारी को मानते हैं, ऐसे में हम शासन में ज्ञान और विशेषज्ञता की जरूरत को सबके वोट देने के अधिकार के साथ कैसे संतुलित कर सकते हैं? क्या बिना किसी गहरे दार्शनिक आधार के कोई समाज सच में न्यायपूर्ण हो सकता है, भले ही हम प्लेटो के दार्शनिक राजा वाले मॉडल को ना माने? सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।